नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होगा मतदान। 5 राज्य में 3 दिसंबर को होगी मतों की गिनती। सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत नहीं। बिहार सरकार की याचिका दूसरे बेंच में स्थानांतरित की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से करेंगे संवाद। अब समाचार विस्तार से। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कराए जाएंगे। इन राज्यों में मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मिजोरम में 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना इस महीने की 13 तारीख को जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को और दूसरे चरण का 17 नवंबर को होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना इस महीने की 13 तारीख को और दूसरे चरण के लिए 21 तारीख को जारी होगी। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सूचना को 21 अक्टूबर को जारी होगी, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य में चुनाव की अधिसूचना 3 नवंबर को जारी होगी। समाचार कक्ष से मनोज।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले होने वाले अंतिम विधानसभा चुनाव होंगे। 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें हैं और लगभग 16 करोड़ मतदाता हैं। इन चुनावों में 60 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एशियाई खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एथलीटों की प्रशंसा करेंगे और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करेंगे। एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत दिए जाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई की। खंडपीठ ने मामले को जस्टिस अरुण घोष की पीठ को स्थानांतरित कर दिया। इस पीठ ने ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ बीटीसी और डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने का आदेश दिया था। एसएलपी स्थानांतरित किए जाने के बाद राज्य सरकार ने याचिका वापस ले ली और न्यायालय को बताया कि इस मामले में नए सिरे से रिट याचिका दायर की जाएगी। केंद्र सरकार ने पटना के अनिसाबाद से एम्स तक 6 लेन वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पथ निर्माण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड फुलवारी शरीफ के रास्ते एम्स को जोड़ते हुए NH 138 में मिल जाएगी। इस सड़क के निर्माण के लिए फिलहाल 950 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। राजद के विधान पार्षद प्रोफेसर रामबलि चंद्रवंशी ने जातीय गणना की रिपोर्ट को खारिज किया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट सच्चाई से परे है और इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है। उन्होंने रिपोर्ट में चंद्रवंशी समाज की आबादी बहुत कम कर दिखाए जाने का आरोप लगाया है।
लेकिन जब उस आंकड़े की गहराई में जब गया तो उसमें कुछ कहीं न कहीं उसके विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे। पारदर्शिता का अभाव दिखाई दिया। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर स्टडी किया था एनसी नाइन जो एक एजेंसी है और सरकारी एजेंसी है, उस एजेंसी के रिपोर्ट में जो जनसंख्या दर्शाई गई है वो चंद्रवंशी का है 32,32,000 और अभी जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके 10 साल बाद अभी आ रहा है घटा हुआ 21,00,000 समथिंग। तो ये 9,00,000 का डिफरेंस जो रहा है घटा हुआ, घटता तो कभी नहीं चाहिए आबादी।
समस्तीपुर में आज CPIM द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद सीताराम येचुरी ने संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार से देश भर में जातीय गणना करवाने की मांग की। राज्य में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 286 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 159 नए मामले मिले हैं। इधर वैशाली में 15, सारण और बांका में 13-13 और भागलपुर में 10 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 9,000 से अधिक हो गई है। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर माधव धर्मी ने डेंगू से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी।
पहली बात तो ये है कि मच्छरों को पनपने ना दें। आपके छतों पर या फिर घर के आजू बाजू पड़ी हुई वस्तुएं जैसे कि टूटे हुए गमले, टायर्स या फिर प्लास्टिक की वस्तुएं, इनमें जाके बारिश का पानी बस जाता है और इनमें पनपते हैं डेंगू के मच्छर। ऐसे स्थानों को नष्ट कर दिया जाए। दूसरी बात है कि आपके घरों में मच्छरों ने प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपकी खिड़कियों को स्क्रीनिंग वगैरह करा सकते हैं। और तीसरा उपाय, मच्छरों को आपको काटने ना दे, इसके लिए आप कर सकते हैं मच्छरदानी का प्रयोग या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग। अगर बीमारी के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आपके डॉक्टर को मिलिए और उनसे परामर्श लीजिए। दोस्तों याद रखिए, डेंगू से डरे नहीं लेकिन सचेत रहिए।
आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत एक महीने से भी कम समय में 3,00,000 से अधिक रक्त यूनिट एकत्रित की जा चुकी है। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पहले सालाना केवल 9,00,000 रक्त यूनिट एकत्र की जाती थी। उन्होंने मानवता की सेवा के लिए सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल AIRNews Patna पर सुने जा सकते हैं। राज्य से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है, इसके चलते बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के खगड़ा घाट में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार कौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है।
आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व के भागों के एक या दो स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का, जबकि राज्य के शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है।
डाक विभाग ने राज्य के छोटे उत्पादकों, कलाकारों और शिल्पियों के उत्पादों की पहुंच विदेशों तक बढ़ाने के लिए डाक निर्यात केंद्रों की शुरुआत की है। बिहार सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल परिमल सिन्हा ने बताया कि अभी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और कटिहार के अलावा राज्य के 44 छोटे बड़े डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध है। श्री सिन्हा ने बताया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय की मदद से इसे संचालित किया जा रहा है। मधुबनी जिले के साहर घाट में डकैतों की गोलीबारी और बमबारी में पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। लूटपाट के दौरान डकैतों ने घर के 5 सदस्यों को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जवान को बेहतर इलाज के लिए मधुबनी भेजा गया है। डकैतों ने व्यापारी के घर से करोड़ों रुपए की संपत्ति भी लूट ली। पुलिस ने बताया कि लगभग 50 की संख्या में आए डकैतों ने घटना को अंजाम दिया। नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमबीबीएस की पढ़ाई आज से शुरू हो गई है। पहले बैच में 96 छात्रों ने नामांकन लिया है। आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एप्रॉन सेरेमनी का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि सीमांचल के इस पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज में 600 बेड की क्षमता है, साथ ही सभी अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए पटना और गया से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। आनंद विहार से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक सप्ताह में 2 दिन अप और डाउन में चलाई जाएगी। वहीं पटना से आनंद विहार के बीच एक अन्य ट्रेन का परिचालन 25 नवंबर से 21 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को अप और डाउन में होगा। इसके अलावा गया से आनंद विहार के बीच 20 नवंबर से 8 दिसंबर तक सप्ताह में 3 दिन स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। समस्तीपुर के रूप नारायण बेलागांव निवासी विजय कुमार को फाइलेरिया ग्रसित दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाएगा। बिहार में पहली बार फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन दिया जा रहा है। कैमूर जिले के जीटी रोड स्थित समेकित चेक पोस्ट के पास पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से लगभग 13,000 बोतल शराब बरामद की है। मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के बलवा कुंवारी में अपराधियों ने घर घुसकर एक निजी स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं सारण जिले के एकमा बाजार में अपराधियों ने एक किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। शेखपुरा जिले के बेलछी बेलदरिया में अपराधियों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में शॉर्ट सर्किट के कारण एक होटल में आग लग जाने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। पूर्णिया जिले के रुपौली में एक ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक बिजली कर्मी की मौत हो गई। वहीं लखीसराय जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के 6 नंबर मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से ई रिक्शा सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौला गांव में पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। शिवहर के पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय अदालत के आदेश पर जिले के 2 थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के पनकटवा स्थित किसान भवन में एसएसबी की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होगा मतदान। 5 राज्य में 3 दिसंबर को होगी मतों की गिनती। सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत नहीं। बिहार सरकार की याचिका दूसरे बेंच में स्थानांतरित की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से करेंगे संवाद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।